عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 12 اگر یہ وہی عورت تھی جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں تو پھر اس کی ہمت کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی، اور میں یہ تسلیم کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ میں بھی روایتی پولیس والوں کی طرح تفتیش میں الجھ کر اور ہر طرف جال بجھا کر مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ سب سے اہم لیکن غیر متوقع جگہ پر ناکہ لگوانا بھول گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اگر کوئی اور عورت بھی اس کیس کا مرکزی کردار ہے تو وہ واپس یہاں بھی آ سکتی ہے؟ ضرور اس جگہ میں کوئی خاص بات ہے جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس کی کیس کے باقی کرداروں کے لیے کوئی نہ کوئی شدید جذباتی اہمیت ہے۔ اب شاید وہ دوبارہ یہاں نہ آئے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں خود اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ رحمان صاحب نے گاڑی کا حلیہ اور عورت کی شبیہ کی تفصیلات مجھ سے کئی بار پوچھی۔ نمبر میں نوٹ نہیں کر پایا تھا کیونکہ میرا فاصلہ گاڑی سے بہت زیادہ تھا، البتہ گہرے نیلے یا سیاہ رنگ کی ایسی مارک ٹو گاڑیاں تو شہر میں نہ جانے کتنی ہوں گی۔ بہرحال رحمان صاحب کے نقطۂ نظر سے یہ کیس میں بڑی پیش رفت تھی، اور شام ڈھلنے تک اس مقام پر مختلف پولیس والوں کا آنا جانا برقرار رہا۔ اس وقت بھی سورج ڈھلنے کے قریب میں دور ریت پر بیٹھا تھانے دار کو اپنے محرر کو کچھ تفصیلات لکھواتے ہوئے دیکھ رہا تھا، شاید وہ وقوعے کا نقشہ پھر سے بنا رہے تھے۔ تھانے دار کی آواز مجھ تک آ رہی تھی، محرر نے کچھ غلط لکھ ڈالا۔ تھانے دار چلایا، میں نے کہا تھا مشرق کی سمت سے نشانی ملی، مشرق کی سمت سے، اور سمجھ نہیں آتا کیا؟ اور ٹھیک اسی لمحے میرے کان میں اسماعیل سنتری کی آواز گونجی، ہاں اس نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ وہ مجذوب میرے لیے یہی پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ میں مشرق کی سمت دیکھوں، اور مجھے پہلی نشانی مشرق ہی میں ملی تھی۔ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ رات جب میں اس عورت کو دیکھنے کے بعد واپس حجرے میں پہنچا تو سلطان بابا میری تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں اپنے خواب اور پھر اس عورت کے بارے میں بتایا کہ جس ہیولے کو چند لمحے پہلے میں نے بند آنکھوں کے پردے تلے دیکھا وہی کچھ دیر بعد میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سلطان بابا میری بات ختم ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک میری جانب دیکھتے رہے۔ جانتے ہو یہ تمہارا پہلا الہام تھا، آج تک تمہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ اور وہ کیا کہتی ہے سائنس کی ڈائی پولر تھیوری آف گریویٹی؟ اس کے مطابق وہ سب صرف بنی ہوئی اور گزری ہوئی تصویروں کے فریم ہوتے تھے، لیکن اب جو تم نے دیکھا وہ ماضی نہیں مستقبل تھا۔ لگتا ہے تمہاری ریاضت قبول ہو رہی ہے عبداللہ، جیتے رہو۔ مجھے دعا دیتے وقت ان کی آنکھوں میں نمی اور میرے سر پر رکھا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ تھانے دار اور محرر نے اپنا کام ختم کر لیا اور جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس کروں تو فوراً بستی کے پوسٹ آفس سے ماہی تحصیل تھانے کے نمبر پر فون کر کے بتا دوں۔ سورج ڈھلتے ہی سب عملہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح رحمان صاحب کا پیغام آ گیا کہ میں تھانے آ کر اس عورت کا خاکہ بنوا دوں۔ میں بستی سے چلنے والی واحد قدیم سی بس میں سوار ہو کر تھانے پہنچا تو زیادہ تر عملہ تھانے دار سمیت کسی چھاپے پر گیا ہوا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے چند ٹکڑے ان شریر بچوں کی طرح ادھر ادھر ڈول رہے تھے جو اسکول سے بھاگ کر کھلیانوں اور میدانوں میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں۔ خاکے بنانے والا فنکار اور محرر تھانے میں موجود تھے۔ محرر نے مجھے اپنے ہی کمرے میں بلا لیا۔ کمرہ کیا تھا؟ چھوٹا سا کیبن تھا جہاں ایک طرف میز پر ایک پرانا سا وائرلیس نظام اور ایک قدیم سا مٹیالے رنگ کا ٹیلی فون پڑا ہوا تھا جس کے ڈائل کے اوپر ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ ताले की हालत बता रही थी कि उसमें चाबी घुमाने के मौके कम ही आते होंगे। मुहर्रर ने मुझे फनकार मुसव्वर के साथ बिठा दिया और खुद चाय का कहने के लिए कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस रात उस औरत के चेहरे का सिर्फ दायां हिस्सा ही देखा था, वो भी सुर्ख मलगजे अंधेरे में। चेहरे का बायां हिस्सा नकाब और मुकम्मल अंधेरे में छुपा हुआ था, लिहाजा मैं एहतियात से सोच सोच कर मुसव्विर को उस औरत के खद्दोखाल अपनी याददाश्त के मुताबिक बता रहा था, जिसे वो तेजी से एक कागज पर पेंसिल के जरिए स्केच की सूरत में उतार रहा था। अचानक मुसव्विर ने अपनी जगह से जरा हरकत की और पहलू बदलकर बैठ गया। उस वक्त वो कमरे की मशरकी सब में बैठा हुआ था। उसके हटते ही मैंने देखा उसके पीछे दीवार पर मेखों की मदद से झूलता मुल्क का एक पुराना नक्शा लटका हुआ था। मैं मुसव्विर को तफसीलात बताते बताते बेख्याली में नक्शे में अपना शहर ढूंढने लगा। अपने शहर से रहीमपुर, रहमानाबाद, फिर जबलपुर, कमालाबाद और फिर कालगढ़ और अब ये छोटी सी तहसील माही। मैं नक्शे पर ख्याली उंगली से अपने सफर की मंजिलों के नुक्ते जोड़ता रहा और फिर अचानक ही मेरे जहन में एक कौंदा लगा। मैंने जल्दी में दो तीन बार फिर नक्शे पर उन नुक्तों को जोड़ा। सुल्तान बाबा ने भी मुझसे यही कहा था कि वक्त मिले तो मैं नक्शा देख लूं। मुसव्विर अपने काम में जुटा हुआ था, उसे मुझसे जितनी तफसील मिल सकती थी मैं उसे बता चुका था। मैंने जमीन पर पड़े उसके कैनवस के थैले में से झांकती बहुत सी रंग बिरंगी पेंसिलों में से एक पेंसिल निकाली और उसकी मदद से अब तक के उन अपने सफर के नुक्तों को जोड़ा और मेरी आंखें फैलती चली गईं। उन नुक्तों को जोड़ने से जो छवि उस मटियाले नक्शे पर मेरी रंगीन पेंसिल ने बनाई थी वो पहले अलिफ और फिर ला तक आकर रुक गई थी, यानी अगर मुकम्मल लफ्ज जोड़ा जाता तो अल्लाह का इलाह बनता था, यानी वो हर्फ हे की कमी थी जिसे जोड़ने से पूरा अल्लाह का नाम बन जाता। मेरे दिलो दिमाग में झक्कड़ से चलने लगे। सुल्तान बाबा ने कहा था कि उन्हें हमारे सफर के रास्तों और मंजिलों के बारे में कुछ इशारे मिलते हैं। क्या कुदरत मेरे रास्तों और पड़ाव के मकामात के जरिए अपना पूरा नाम लिखवाना चाहती है? तो क्या अब तक का मेरा यह सारा सफर पहले ही से तयशुदा था? क्या यह सफर उसी वक्त तय हो चुका था जब अब्दुल्ला नाम का ये एजाज साहिर के नाम की जगह मेरे हिस्से में लिख दिया गया था? मुसव्विर जाने कब से खाका मुकम्मल कर चुका था और इस इंतजार में था कि मैं दीवार के नक्शे से हटकर उसकी तस्वीर को देखकर अपना हतमी फैसला सुनाऊं। लेकिन उस वक्त मेरे हवास मेरे काबू में थे ही कब। मुहर्रर कब का चाय रख कर जा चुका था जो अब पानी हो चुकी थी। मैंने खाके पर नजर डाली। मुसव्विर असल चेहरे से बहुत करीब था। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो ऐसा ही एक खाका मेरे लिए भी बना दे। मुसव्विर ने बिना किसी पसोपेश के हूबहू वैसा ही दूसरा खाका बनाकर मेरे हवाले कर दिया और एक बार फिर उस आधे चेहरे के खाके ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी उस औरत से पहले भी कहीं न कहीं मुलाकात हो चुकी है। काश मैं उसे बरवक्त पहचान पाता। मेरे बस्ती पहुंचते पहुंचते असर का वक्त बस निकलने को था। नमाज पढ़कर जब मैं मस्जिद से बाहर आया तो दूर आसमान पर मैंने धानी रंग की एक पतंग उड़ते हुए देखी। नीचे साहिल पर अशरफ अपने दोस्तों के साथ खुशी में सरशार पतंग को ढील दिए जा रहा था और उसकी धानी पतंग दूर आसमान में इतनी बुलंद हो चुकी थी जहां से समंदर के ऊपर का हल्का नीला आसमान भी धानी रंग इख्तियार करता जा रहा था। मैंने चौंक कर दूर टीले की जानिब देखा तो रेहान की गाड़ी खड़ी नजर आई। मुझे थानेदार ने बताया था कि ठीक इसी रंग और मॉडल की दूसरी गाड़ी रेहान ने लैला को भी कंपनी की तरफ से दे रखी थी। रेहान हस्बे मामूल समंदर की तरफ चेहरा किए गुमसुम खड़ा था। आज उसके साथ उसका पुराना ड्राइवर भी मौजूद था। उस ड्राइवर को मैं पहले भी रेहान के साथ थाने वाली मुलाकात के रोज देख चुका था, जो 65 से 70 बरस के एक बेटे का एक संजीदा और कमगोर शख्स था। दिलचस्प बात यह थी कि मैं अपनी जिंदगी में अब तक जितने भी ड्राइवरों से मिला था वो गुफ्तगू के मामले में दो इंतहाओं पर थे, या तो बे इंतहा बातूनी या फिर इंतहाई खामोश। रेहान मेरे कदमों की आहट सुनकर पलटा। ओ तुम हो, मुझे रहमान साहब ने बताया था कि तुम्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। चलो अच्छा हुआ, पुलिस की गलतफहमी दूर हो गई। मैंने गौर से रेहान की तरफ देखा। मुझे पुलिस की कभी इतनी परवाह रही भी नहीं, लेकिन क्या आपका दिल भी मेरी तरफ से साफ हो गया है? रेहान उसी तरह खला में घूरता रहा, जो खुद अपनी जात से ही बदगुमान हो उसे भला औरों से बदगुमानी का मौका ही कब मिलता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। रेहान के अंदाज से लगता था कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपनी तन्हाई में मुदाखलत भी शायद पसंद नहीं आई थी। इतने में उसका ड्राइवर गाड़ी से निकलकर हमारे करीब आ गया और रेहान से बोला, छोटे साहब, सूरज ढलने वाला है, हमारी वापसी का वक्त हो गया है। रेहान की आवाज दुरुस्त थी, कुछ देर में चलते हैं। लेकिन मेरी हैरत बढ़ गई जब ड्राइवर ने दोबारा इसरार किया, नहीं छोटे साहब, सूरज ढल जाएगा, हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए। रेहान ने कड़ी नजरों से ड्राइवर को देखा, लेकिन बादले ना खास्ता उसने अपनी गाड़ी की जानिब कदम बढ़ा दिए। एक ड्राइवर की हिदायत पर रेहान का यूं बिना चूं चरा किए चल देना मुझे अजीब सा लगा, और फिर सूरज ढल जाने में ऐसी क्या बात थी? ऐसी हिदायत तो आम तौर पर छोटे बच्चों के लिए होती हैं कि शाम ढलने से पहले घर लौट आना, जबकि रेहान के बारे में मुझे जितना कुछ पता चला था इस एतबार से तो वो अपने घर में तन्हा रहता था। माँ बाप अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे और वो अकलौता था, लिहाजा उसका घर में इंतजार करने वाला कोई भी नहीं था। एक लैला थी जो उसकी जिंदगी में बहार भरकर आने से पहले ही पतझड़ की नजर हो चुकी थी। फिर घर वापस लौटने की ये जल्दी क्यों? मैं खुद अपने आप से ही सवाल करके खुद ही उनके जवाब तलाश करता रहा। सूरज ढलने का ताल्लुक अंधेरे से बनता है, तो क्या रेहान तारीकी से खौफ के किसी असरार में मुब्तला था? मेरा जी चाहा कि मैं रेहान के पीछे जाकर देखूं कि वो इस वक्त अपने घर ही गया है या उसकी कोई और मसरूफियत है। ईशा के बाद मुर्तजा साहब मेरे और सुल्तान बाबा के लिए घर का बना हुआ कुछ मीठा लेकर आए, तो अशरफ भी उनके साथ था। मैंने अशरफ को इशारा किया और हम दोनों बरामदे में बैठ गए, और मैंने इधर उधर की बातों के दौरान उससे पूछा कि क्या उसके पतंग वाले साहब कभी शाम ढलने के बाद भी साहिल की तरफ आए हैं। अशरफ ने कुछ देर सोचा और फिर नफी में सर हिलाया, नहीं नहीं ना, वो तो मेम साहबा को भी कभी देर तक वहां नहीं रहने देते थे, हालांकि मेरे सामने कई मरतबा मेम साहब ने उनको बोला भी था कि हम रात को पतंग उड़ाएंगे और वो अपनी पतंग सितारों तक लेकर जाएंगे, लेकिन साहब कभी रात तक रुकते ही नहीं थे। मैंने मुसव्विर का बना हुआ खाका अशरफ को दिखाया। हाँ हाँ, यही तो थी, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। कुछ गुत्थियां एक जानिब से उलझ रही होती हैं तो दूसरी तरफ से उनकी गिरहें खुल भी रही होती हैं। अगली सुबह मैंने पोस्ट ऑफिस से थाने फोन करके रहमान साहब के दफ्तर का नंबर लिया और उन्हें फोन करके गुजारिश की कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने मुझे थाने पहुंचने की हिदायत की और खुद भी दो घंटे के बाद वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें बताया कि सीनियर डॉक्टर की पेशगोई के मुताबिक मेरे दौरों की तादाद में इजाफा और उनके दरमियानी वक्फे में रोज बरोज कमी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे मुकम्मल जुनून से पहले लैला के कत्ल की गुत्थी सुलझ जाए और उसके लिए मुझे उनकी कुछ मदद की जरूरत है। रहमान साहब ने चौंक कर मुझे देखा, लेकिन तुम्हारा इलाज भी तो साथ साथ चल रहा है, फिर तुम्हें इतना पुख्ता यकीन क्यों है कि तुम मुकम्मल जुनू की मंजिल को पहुंचकर ही रहोगे? बहरहाल मैं हर तरह की मदद के लिए हाजिर हूं और यही मेरा फर्ज भी है। नहीं, मेरे लिए फर्ज से बढ़कर आपका एक और एहसान होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी और रेहान की एक मुलाकात का बंदोबस्त करवा दें, लेकिन हमारी मुलाकात शाम ढलने के बाद होनी चाहिए। रहमान साहब को हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन शाम ढलने के बाद ही क्यों? शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि रेहान शाम के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करता। पुलिस को भी उसने हमारे बड़ों के जरिए खास हिदायत कर रखी है कि वो मगरिब के बाद किसी शख्स से भी नहीं मिलता, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। हम भी इसे ज्यादा इसरार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ा आदमी है और उसकी पहुंच भी दूर तक है। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन क्या ये बहुत अजीब बात नहीं है? एक शख्स मगरिब होते ही दुनिया की नजर से ओझल हो जाता है, अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसे कैसे रब्ता हो सकेगा? इमरजेंसी के लिए उसके एक पुराने ड्राइवर का फोन नंबर मौजूद है जो मगरिब के बाद रेहान की तमाम फोन कॉल्स और पैगाम वसूल करता है। असल में ये ड्राइवर रेहान के बाप सेठ गयास के दौर का है और यही दुनिया का वो वाहिद फर्द है जिसे रेहान का एतमाद हासिल है। लेकिन ये मुहिमा कैसा है? कुछ नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। वैसे आम लोगों में यही बात मशहूर है कि रेहान को बचपन ही से अंधेरे का कोई खौफ यानी डार्कनेस फोबिया है। बड़े घरों के बच्चों में तन्हाई की वजह से ऐसी नफसियाती बीमारियां कुछ ज्यादा अचंभे की बात नहीं होती। और फिर आखिर ये उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी मर्जी कि वो अंधेरा होने के बाद किसी से मिले या इनकार कर दे, हम उस पर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। मैंने गहरी सांस ली। मतलब ये कि मेरा रेहान से मगरिब के बाद मिलना मुमकिन नहीं होगा। मैं कुछ वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, आप इतना तो कर सकते हैं कि मुझे शाम ढले उसके घर तक पहुंचा दें या मुझे उसका पता दे दें, मैं अपने तौर पर उससे मिलने की कोशिश करूंगा। रहमान साहब अब भी कुछ मखमसे में थे। हाँ, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरा अमला तो मेरे हान की कोठी के बाहर पहुंचा देगा, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पाया कि तुम उससे मगरिब के बाद क्यों मिलना चाहते हो। मैंने सुना है रेहान अपनी उस अंधेरे से डरने वाली बीमारी के इलाज के लिए बैरून मुल्क के भी बहुत से चक्कर लगा चुका है और वहां के आला पाए के मुआलजीन से भी मशवरा कर चुका है, लेकिन उसका मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की के मिसदाक फैलता ही चला गया। मुझे डर है तुम्हारी इस मुदाखलत पर वो नाराज होकर तुम्हारे लिए मजीद मसाइल न खड़े कर दे। याद रखो तुम अभी तक जमानत पर हो, तुम्हें मुकम्मल रिहाई नहीं मिली। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये खतरा मोल लेना चाहूंगा। मैं आपकी सरकारी मजबूरियां और रेहान का असर रसूख जानता हूं, इसीलिए खुद अपने तौर पर एक कोशिश करके देखना चाहता हूं। रहमान साहब ने हुंकारा भरा और ठीक 3 घंटे बाद मगरिब से कुछ पहले मुझे एक अजीम शान कोठी के बहुत बड़े से गेट के करीब उतारकर पुलिस की जीप खामोशी से आगे बढ़ गई। मैंने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर मगरिब की अजान खत्म होते ही गेट पर लगी घंटी पर उंगली रख दी। कुछ देर बाद अंदर से इंटरकॉम पर किसी की आवाज उभरी। कौन है? मैं अब्दुल्ला हूं, मुझे रेहान साहब से मिलना है, फौरन जवाब मिला। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते, आप सुबह आए। इंटरकॉम पर कुछ देर के लिए गहरी खामोशी जारी रही। फिर कोई थकी थकी सी आवाज में बोला, हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? ये आवाज मेरे लिए अजनबी थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई औरत रेहान की आवाज में बोलने की कोशिश कर रही हो। रूप बहरूप। मैं कुछ देर तो उस आवाज के उतार चढ़ाव ही में उलझा रहा। इंटरकॉम पर दोबारा जरा दृष्टी से पूछा गया, तुम कुछ लैला के बारे में बताने वाले थे? जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? क्या मैं रेहान साहब से बात कर सकता हूं? दूसरी जाने से झंझलाती हुई तेज आवाज उभरी, मैं रेहान ही बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना है? इस बार आवाज वाकई रेहान ही की थी। मैंने अपनी दरख्वास्त दोहराई, क्या मैं आपसे मिलकर बात नहीं कर सकता? आप अपने मेहमानों को इस तरह दरवाजे से ही बात करके लौटा देते हैं। दूसरी जानिब खामोशी छा गई, शायद इंटरकॉम रख दिया गया। कुछ ही देर में गेट के करीब कदमों की चाप उभरी और दरबान ने गेट खोल दिया। दरवाजे के बिल्कुल सामने अंदर जाती पक्की सड़क के दोनों तरफ दूर तक खूबसूरत बिजली के कमान नुमा खम्बों की कतार सी चलती गई थी और जिन पर लटके छोटे छोटे फानूस यूं जल रहे थे कि उन्होंने दूधिया रोशनी का एक सैलाब सा बहा रखा था। मैंने खास तौर पर यह बात महसूस की कि कोठी में चारों तरफ रोशनी का ऐसा खास इंतजाम किया गया था कि हर सू चरागा जैसी कैफियत थी। मैंने जिस शख्स के कदमों की चाप सुनी थी वह रेहान का वफादार ड्राइवर था, जिसके चेहरे पर बरहमी के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो मुझे देखकर चौंका, लेकिन फिर अपने तासुरात छुपाकर बोला, माजरा चाहता हूं, लेकिन इस वक्त छोटे साहब किसी से भी नहीं मिलते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मामला किसी की जिंदगी या मौत ही का क्यों ना हो। ड्राइवर ने मेरी बात के जवाब में दोबारा सख्ती से कहा, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे मौकों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। तुम तो उसी साहिली मस्जिद के तालिबे इल्म हो ना, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, तुम्हें जो भी इतला देनी है तुम मुझे दे सकते हो। ड्राइवर ने अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए। शायद वो यही समझा था कि मैं रेहान की हैसियत देकर कुछ पैसे बटोरने के लिए इतनी दूर आया हूँ और खास इसी मकसद के लिए रेहान से मिलना चाहता हूँ। मैंने नोट दोबारा ड्राइवर के हाथ पकड़ाए। तुम गलत समझ रहे हो, मुझे जो बात करनी है उसका बराह रास्त ताल्लुक रेहान साहब से ही है, लेकिन अगर वो वाकई इस कदर मजबूर हैं कि मुझसे मिलने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आ सकते तो मुझे वापस पलट जाना चाहिए। हाँ अलबत्ता एक पैगाम जरूर दे देना कि मैं उस औरत के बारे में कोई बात करना चाहता था जो लैला की मौत की रात पहाड़ी टीले पर आई थी। मैं अपनी बात खत्म करके पलट गया, लेकिन मैंने मुड़ते मुड़ते भी ड्राइवर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरते देख लिया। हालांकि मैंने सिर्फ अशरफ से ही अब तक उस औरत की कत्ल वाली रात टीले पर आमद का सुना था, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक अंधेरे में चलाया हुआ तीर नहीं था। मेरा वजदान न जाने क्यों मुझे बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उस पुरेसरार औरत का इस कत्ल से जरूर कोई ऐसा ताल्लुक था जिसके धागे लैला और रेहान के माजी से जुड़े हुए थे। मैं शहर से साहिल की तरफ जाने वाली आखिरी बस लेकर जब साहिल पर उतरा तो इशा की नमाज हो चुकी थी। जाने से पहले मैं सुल्तान बाबा को बता गया था, फिर भी वो मस्जिद के बाहर मुझे अपना इंतजार करते हुए मिले। मुझे देखकर उनके चेहरे पर बशाशत सी आ गई। जानते हो मियां, किसी उस्ताद के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? मैं उनका मुद्दा समझकर मुस्कुराया। जब वो अपने किसी नालायक शागिर्द को अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए देखता है। मेरी नालायक शागिर्द वाली इस्तलाह पर वो भी मुस्कुरा दिए। कालगढ़ से निकलने के बाद मेरी ज्यादातर कोशिश यही रही थी कि मैं सुल्तान बाबा की तबीयत के पेश नजर उन्हें कम से कम जहमत दूं। डॉक्टरों ने भी उन्हें सख्ती से आराम की तलकीन की थी, इसलिए मैं हत्तल इम्कान उनके जहन पर किसी भी तरह का बोझ डालने से एतराज करता, लेकिन आज उनकी बात सुनकर न जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि सुल्तान बाबा खुद भी दानिश्ता मुझे इस मामले में अपना वजदान आजमाने का मौका दे रहे थे। शायद मेरी तरबियत का अमली दौर शुरू हो चुका था और अब जिंदगी की गिरहें मुझे खुद खोलना थी। अगली सुबह फजर के बाद मैं साहिल पर चहलकदमी करने चला गया। सुबह की ओस से भीगी ठंडी रेत पांव के तलवों को बहुत भली लग रही थी। मुझे हकीम साहब ने कल एक बार फिर गीली रेत पर चलने का मशवरा दिया था। बकौल उनके ये मेरे कमजोर आसाब के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे धूप और गर्मी से भी खुद को हत्तुल इम्कान बचाने की हिदायत की थी। शायद जुनून और तपिश का आपस में गहरा ताल्लुक था। फिर सूरज का तांबा जमीन पर बहने के चंद लंबे बाद ही, जब इब्तदाई किरणें शरीर बच्चों की तरह आपस में लड़ती झगड़ती जमीन को सबसे पहले चूमने के लिए लपक रही थीं और मैं अपनी चहलकदमी खत्म करके हुजरे में जाने के लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मैंने अचानक अपने शाम वाले तीर को ठीक निशाने पर लगते देखा। दूर नीचे आती कोलतार की सड़क पर सफेद मर्सिडीज दौड़ती हुई ऊपर पहाड़ी की जानिब आ रही थी। ये मर्सिडीज मैं कल शाम ही रेहान के पोर्च में खड़ी देख चुका था। शायद शहर के अंदरूनी रास्तों के लिए वो यही कार इस्तेमाल करता होगा। गाड़ी चंद लम्हों में मस्जिद के बाहर रेत के बड़े मैदान में पहुंचकर रुक गई और उसमें से रेहान का ड्राइवर बरामद हुआ। वो तन्हा आया था। छोटे साहब, तुमसे कल शाम ना मिलने पर माजरत खा है, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तुम चाहो तो नाश्ता वहीं चलकर कर लेना। सुल्तान बाबा गाड़ी की आवाज सुनकर सहन में निकल आए थे। मैंने उनकी जानिब देखा, उन्होंने रजामंदी के इजहार में धीरे से सर हिलाया। ड्राइवर का नाम याकूब था और वो रास्ता भर बिल्कुल खामोश रहा। मैंने भी कोई बात करने की कोशिश नहीं की। जब हम कोठी के गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे तो दरबान ने बताया कि रेहान साहब कोठी के पिछले हिस्से में बने गाफ कोर्स में मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये एकड़ों पर फैली हुई जदीद वजह की कोठी थी, जिसके अंदर ही घास के इतने वसी लान थे कि एक बड़े घास के कते को गाफ के खेल के लिए मखसूस कर दिया था। हमारे घर में पापा ने भी फार्म हाउस के पीछे एक छोटा सा गाफ कोर्स बना रखा था, लेकिन मुझे कभी इस धीमे खेल की समझ आई ही नहीं। याकूब के साथ गाड़ी से उतरकर पिछली जानिब जाते हुए मैंने टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल के पुख्ता मैदान भी बने देखे। शायद रेहान अपने तमाम खेलों के शौक घर ही में पूरे कर लेता था। घर के अंदर ही एक मस्नूई नदी भी बनाई गई थी, जिस पर बना पुल पार करते ही दूर बड़ी बड़ी सब्ज छतरियों के नीचे रेहान और दो अफराद का अमला मुझे नजर आया, जो रेहान के गॉफ वाली छड़ियों का बैग और गेंद वगैरह थामे खड़े थे। रेहान ने रेत के एक छोटे से मस्नूई ढेर के पीछे पड़ी गेंद को बहुत एहतियात से ताक कर छड़ी की जरब लगाकर उछाला और गेंद कुछ देर दूर एक छोटी सी दुकान पर बने एक सफेद गोल सुराख में गायब हो गई। अमले ने सताईशी जुमलों से अपने साहब की पजीराई की। मुझे देखकर रेहान ने छड़ी अमले के हवाले की और अपने हाथों पर पहने छोटे सफेद दस्ताने भी यके बाद दीगरे उतार दिए। अमला इधर उधर हो गया और ड्राइवर याकूब भी एक खास मकाम पर आकर रुक गया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ रेहान के करीब पहुंचा। उसके सफेद जूते घास पर अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। उसने मेज पर पड़े जूस के ग्लास के ऊपर से प्लास्टिक का कवर उतारा। नाश्ता करोगे? नहीं, मैं नाश्ते में सिर्फ एक कप चाय लेता हूं, साथ में रात की बासी रोटी का कोई बचा टुकड़ा। रेहान ने जूस का एक लंबा सा घूंट अपने हलक से नीचे उतारा और करीब पड़ी रस भरी की प्लेट से एक ताजा रस भरी उठाकर अपने मुंह में रखी। वो हस्बे मामूल खोया खोया सा था, जैसे मुझसे नहीं मुझसे परे खड़े शख्स से कोई बात कर रहा हो। क्या मजहब के लिए ये जोग लाजमी होता है? मैं याकूब की कल की पैसों वाली हरकत पर माजरत चाहता हूं। मुझे रहमान साहब ने बताया था कि तुम किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हो, वो तुम्हें कुछ और समझ रहा था। कल तुम कुछ अहम बात बताना चाहते थे, तुम चाहो तो हम खुलकर बात कर सकते हैं। रेहान ने अपने अंदर की बेचैनी को अपने सर्द रवैये से बखूबी ढांप रखा था, लेकिन उसके लहजे की लर्जिश को मैं साफ महसूस कर सकता था। शायद लैला उसकी ऐसी कमजोरी थी जिसका जिक्र आते ही वो खुद अपने बनाए पहरे फलांग कर अपने हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करता था, लेकिन उम्र भर की परोई खारदार तारों को काटना इतना आसान नहीं होता। मैंने गौर से उसके हाथों की खफीफ लर्जिश को देखा। आपने यही बात गुज़श्ता शाम क्यों नहीं सुनी? मैं लैला के आखिरी लम्हात का वाहिद ऐनी शाहिद हूं। मेरी जहनी हालत भी कुछ ऐसी बेहतर नहीं कि मैं तमाम बारीकियों को ठीक तरह से अपने जहन में जमा रख सकूं, इसलिए मैं शाम ढले आपके दरवाजे तक आया था। रेहान ने अपने लहजे की तरक्की को छुपाने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं शाम ढलने के बाद किसी से मुलाकात नहीं करता? मेरे कारोबारी हलके में भी सभी को ये बात पता है और मैं अपने मामूल के खिलाफ कभी नहीं जाता। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? रेहान की आवाज बुलंद हो गई। नहीं, मैं अपने जाति मामलात पर बात करना पसंद नहीं करता। बेहतर होगा तुम भी इस मौजू पर दोबारा बात न करो। मैंने वापसी के लिए कदम उठाए। बेहतर है, अगर हम दोनों के दरमियान एतमाद का इसी कदर फुकदान है तो फिर मेरी यहां मौजूदगी बेमायनी है। रेहान ने मुझे आवाज दी। सुनो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सभी जानते हैं कि इसका ताल्लुक मेरे बचपन के एक खौफ से है। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह अपने हिस्टीरिया पर काबू पा सकूं, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इस मौजू पर बात करना भी तकलीफ दे साबित होता है। उम्मीद है तुम अब मजीद इसरार नहीं करोगे। मैंने पलटकर उसकी जानिब देखा। इस वक्त रूए जमीन पर उससे ज्यादा मजबूर इंसान शायद और कोई न होगा, उसने बात जारी रखी। यकीन जानो, कल जब से मुझे तुम्हारा पैगाम मिला कि तुम लैला की आखिरी सांसों के शाहिद हो और मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो मैं रात भर सो नहीं पाया। तुम नहीं जानते कि यह मोहब्बत किस कदर जालिम और जाबिर जज्बा होता है। चाहे अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उससे मुतालिक हर जिक्र, हर याद मेरे लिए पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। मैं अपनी सारी दौलत देकर भी उससे जुड़ी छोटी से छोटी बात, हर याद अपने दिल की पटारी में बंद कर लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें रुपए पैसे या किसी सिले की हिर्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से निकली दुआ का खजाना तो दे सकता हूं। काश तुमने कभी किसी से मोहब्बत की होती तो आज मेरे दिल का हाल जान पाते। रेहान अपनी बात खत्म करके यूं हांफने लगा जैसे न जाने कितनी दूर से दौड़ कर आया हो। तो अब नौबत यह आ गई थी कि लोग मेरे हुलिये को देखकर मुझे मोहब्बत की दुहाई देने लगे थे। बहरहाल रेहान ने लैला के लिए अपने जज्बात खोलकर बयान कर दिए थे। मुझे उसके लहजे में कोई खोट महसूस नहीं हुआ। वैसे भी मोहब्बत करने वाले अपने अंदर कोई खोट कैसे पाल सकते हैं? मोहब्बत हमारे अंदर इतनी जगह ही कहां रहने देती है कि कोई और जज्बा पनप सके। मोहब्बत हमें अंदर से भर देती है, मुकम्मल कर देती है। रेहान भी अंदर से मुकम्मल था। लैला की मोहब्बत ने उसके अंदर किसी छल कपट का खाना खाली छोड़ा ही नहीं था। फिर उसकी आंखों में यह खौफ कैसा था, यह अजियत कैसी थी जो उसे अपना दर्द अंदर दबाए रखने पर मजबूर कर रही थी। मैं पलटकर चंद कदम आगे बढ़ा और रेहान के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। लैला ने मुझसे सिर्फ एक ही जुमला कहा था, उसके बाद वो अपनी सांसें हार गई। रेहान ने तड़प कर मेरे दोनों कांधे इतनी जोर से पकड़ लिए कि उसकी उंगलियां मेरे शानों में पैवस्त होने लगी। क्या लैला ने तुमसे क्या कहा था, मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझसे कुछ ना छुपाओ। और ठीक यही वो लम्हा था जब मेरे जहन में बयक्त वक्त बहुत से झमाके हुए। मुझे आंखें पढ़ने का दावा कभी न था, लेकिन रेहान की आंखों ने मेरे अंदर न जाने एक ही पल में कितनी बसारतें भर दी। शायद कुदरत बयक्त वक्त मुझसे मेरी फरजानगी छीन भी रही थी और मेरे अंदर दीवानगी के साथ साथ एक अनजानी रोशनी भी किसी दरस से मुस्तकिल छन कर आ रही थी। मैं धीरे से बोला, लैला ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैंने उसे माफ किया। रेहान के सर पर जैसे किसी ने वजनी हथौड़े से हमला कर दिया हो। वो अपना सर थाम कर वहीं कुर्सी पर गिर गया। दूर खड़े याकूब के साकत वजूद में बेचैनी से हरकत पैदा हुई, लेकिन शायद उसकी हद वहीं तक थी। बादले ना खास्ता वो फिर अपनी जगह जमकर रह गया। रेहान के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए और उसके माथे पर पसीने की बूंदें इतनी जल्दी नमूदार हुई जैसे कोई किसी गीले स्पंज को दबा दे। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज लरज रही थी, लेकिन वो किसको माफ करने की बात कर रही थी, ये तो मैं नहीं जानता। शायद उसी अनजानी औरत को जिसे उस रात पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा गया था। रेहान बिल्कुल ही चुप हो गया। मेरे मजीद वहां खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अब रेहान को लैला की यादों की बारात को डोली चढ़ाने में घंटों लग जाएंगे। मैंने याकूब से कहा वह अपने साहब का ख्याल रखे, मैं बस लेकर बस्ती चला जाऊंगा। वापसी पर आते हुए मैं थाना माही के स्टाप पर उतर गया। इस्माइल संतरी के पास कुछ देर बैठकर मैं वापस बस्ती आ गया। जाने उस दिन गर्मी ही कुछ ज्यादा थी या फिर खुद मेरा ही दम हब्स से खुटा जा रहा था। वही एक अजीब सी बेचैनी चारों तरफ से मुझे घेर रही थी, जो मुझे हमेशा ये एहसास दिलाती रहती थी कि कुछ अनहोनी होने को है। शाम तक मैं बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। मुझे सुल्तान बाबा ने बताया था कि पेश कोई अलहाम और वजदान का खुद बहुत बड़ा बोझ होता है, मनो और टनों जैसा वजनी, और हमारे कोमल इंसानी वजूद पर ऐसे लम्हात बेहद गरां और भारी गुजरते हैं। तो क्या मेरे शानों को भी उस वजदान का भारी वजन तोड़ रहा था? आज हफ्ते की रात थी, लिहाजा साहिल पर और पहाड़ी टीले पर गैर मामूली चहलकदमी थी। काफी खानदान छोटे बच्चों समेत साहिल की सैर को आए हुए थे। मगरिब सर पर आ गई थी, लेकिन अब भी काफी लोग साहिल की इस वीरान पट्टी के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। नमाज के बाद मेरे अंदर की बेचैनी ने मुझे सताया तो मैं टीले की चोटी की जानिब चला गया। मलगजा अंधेरा छाया हुआ था। लोग इधर उधर फासले पर टोलियों में बैठे हंस बोल रहे थे, मशरूबात पी रहे थे, अपने बच्चों के साथ दिल बहला रहे थे। मैं उन सब से जरा हटकर बैठ गया और दूर पहाड़ी से नीचे झाग उड़ाते समंदर को देखने लगा, वही समंदर जिसके दूसरे किनारे पर जहरा रहती थी। जाने सुल्तान बाबा ने उसे मेरा पैगाम भेजा होगा या नहीं। मेरे अंदर जहरा को बराह रास्त मुखातिब करने की झिझक आज भी रोजे अव्वल की तरह मौजूद थी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक मुझे किसी ने पुश्त पर मौजूद टीले के पीछे से धीरे से आवाज दी, अब्दुल्ला। मैं चौंक कर पलटा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं अपना वहम समझकर फिर से समंदर की जाने मुतवज्जे हुआ। इस बार आवाज ज्यादा वाजे थी, अब्दुल्ला। अजीब सी करख्त लेकिन निस्वानी आवाज के ताकुब में मैंने एक बार फिर अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की और फिर अगले ही लम्हे मेरे सारे जिस्म का खून एक ही पल में मेरी नसों में जम गया। अपना आधा चेहरा सुर्ख पल्लू में छुपाए और अपने वजूद को एक बड़ी सी चादर में ढके वो चट्टान की आड़ में खड़ी थी। हाँ, ये वही थी जिसे उस रात मैंने उस जगह अपनी सुख सैंडल की एड़ी टूटी छोड़कर भागते हुए देखा था। ये वही औरत थी जिसकी तलाश में पुलिस दर बदर भटक रही थी और जिसे लैला के कत्ल की रात चोटी की जानिब से आते हुए देखा गया था। वो इस तरह छुपकर खड़ी थी कि कुछ दूर मौजूद एक खानदान को इस बात की भनक भी नहीं पड़ सकती थी कि वहां कोई और मौजूद हो सकता है। वैसे भी अंधेरा गहरा हो चुका था और हमारी बातों की आवाज भी बमुश्किल ही वहां तक पहुंचती। मेरे हवास अभी तक जामद थे। तुम उस रोज भाग क्यों गई थी? वो गुर्राई। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने के लिए आई हूं कि रेहान से दूर रहो, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए खुद को मुसीबत में न डालो, वरना जहां एक जान गई है वहां दूसरी भी जा सकती है। मैंने गहरा सांस लिया। तो मेरा शक सही है, लैला की मौत तुम्हारे हाथों हुई है। वो दबी आवाज में चिल्लाई, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो आवाज बिगाड़ कर बोल रही है। तुम अपने काम से काम रखो मौलवी, और तुमने रेहान से क्यों झूठ बोला कि उस रात लैला ने तुमसे कोई बात की थी? मैं उसी टीले पर मौजूद थी जब वो नीचे गिरी थी। उस वक्त नीचे कोई नहीं था, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन अगर वो मेरे और रेहान के दरमियान आने से बाज न आती तो मैं वाकई उसे खत्म कर देती। उसकी आवाज में इस कदर सफाकी थी कि मैं अंदर तक लरस कर रह गया। उसने आज भी अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन न जाने मुझे क्यों उसकी शख्सियत में किसी बड़ी कमी का एहसास हो रहा था। वो एक बार फिर गुर्राई, मैं तुम्हें आज आखिरी बार तंबीह करने आई हूं कि अगर तुमने दोबारा रेहान के दिल में उस मनहूस लैला की मोहब्बत जगाने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। अचानक तीन चार बच्चे अपनी गेंद के पीछे चोटी की जानिब दौड़े और उनकी माए उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ लपकी। जो ही चंद लोग हमारे दरमियान हायल हुए और एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो बटी तो मैंने नजर उठा के देखा तो वो किसी छलावे की तरह वहां से गायब हो चुकी थी। मैं फौरन भागकर चट्टान के पीछे पहुंचा। मुझे दूर अंधेरे में एक हौला तेजी से दौड़ते हुए उस जाने बढ़ता नजर आया जहां कुछ लोगों की गाड़ियां पार्क थी। हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। मैं जल्दी में उसकी जानिब दौड़ा। आज वो किसी दूसरी गाड़ी में आई थी, शायद उसे पुलिस के पहरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो शातिर थी। उसने साहिल पर आने के लिए हफ्ते की शाम का इंतखाब किया था जब वीकेंड मनाने के लिए शहर के बहुत से घराने इस पॉइंट का रुख करते थे। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। चंद ही लम्हों में उसकी गाड़ी फराटे भरने लगी। दफतन मुझे अंधेरे में ठोकर लगी और मैं मुंह के बल रेत पर गिर गया। उठते वक्त मेरी नजर रेत में धंसी एक छोटी सी चीज पर पड़ी और मेरी आंखें पत्थर हो गई। मैं वहीं ढह गया। मैं जान चुका था कि वो औरत कौन थी। हमजाद। उस रात मैं एक पल के लिए भी पलक नहीं झपका पाया। जिंदगी के कितने जाविये और मोहब्बत नामी इस अफरीद के कितने रुख हो सकते हैं। शायद ये बताना हम में से किसी के लिए मुमकिन नहीं है। कम अज कम मैंने तो जब भी ये सोचकर आखिरी सफा पलटा कि शायद ये बाब बंद हुआ, ठीक उसी लम्हे खुद को फिर से पहले सफे पर पाया। अगली सुबह मैंने डाकखाना खुलते ही सबसे पहला फोन रहमान साहब को किया और ठीक एक घंटे बाद मैं थाना माही में उनके सामने बैठा था। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फैलती चली गईं। हस्बे मामूल उनका चेहरा सिगरेट के नीले धुएं के पार धुंध में डूबा नजर आ रहा था। तुम जानते हो, तुम जिस जगह मुझे रात को छापा मारने का कह रहे हो वहां दिन में बाकायदा इजाजत लेकर जाने के लिए भी न जाने कितने ऐवानों की घंटियां हिलाना पड़ती हैं। मुझे महकमे से इजाजत मिलना तो दूर, इस बात का जिक्र करते ही सख्त सुस्त सुनाकर तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी इतने अरसे की नौकरी में चंद अफसराने वाला तो ऐसे होंगे जिन पर आपका भरम और एतमाद कायम होगा, क्या आप उन्हें भी मदद के लिए नहीं पुकार सकते? आप बहरहाल अपना फर्ज ही तो पूरा करेंगे, या फिर महकमा आपको सिर्फ वहां कार्रवाई की इजाजत देता है जहां कार्रवाई करने से किसी ईवान की घंटी ना हिलती हो? रहमान साहब ने एक लंबा सा कश लेकर सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया। बहुत तलख है, लेकिन सच यही है कि हमारी अनदेखी हदें हमेशा ही से मुकर्रर हैं। वो कुछ देर किसी गहरी सोच में गुम रहे और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, आज ये जुआ भी खेल लेते हैं। मुझे तुम्हारे वजदान पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता सुझाई भी तो नहीं दे रहा, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हाथ जरा सा भी तिरछा पड़ा तो हुक्काम मुझे फारिग करने में 24 घंटों से भी कम वक्त लगाएंगे, और ऐसी सूरत में मैं भी तुम्हारी ही मस्जिद के हुजरे में अपना बिस्तर डालूंगा। उन्होंने चंद फोन नंबर घुमाए और फिर शाम ढलते ही हम कुछ जरूरी नफरी के साथ अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद थे। मुमकिना मजाहमत के बाद दरवाजा खुलवा लिया गया। रहमान साहब ने अपने अमले को हिदायत कर दी थी कि जब तक वो खुद किसी से बात करने का न कहें, तब तक किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत का पैगाम या फोन उन्हें मुंतकिल ना किया जाए। घर में अजीब सन्नाटा तारी था। हम तेजी से आगे बढ़े तो मरकजी इमारत के दरवाजे को मुकफ्फल पाया। रहमान साहब के इशारे पर दो मजबूत जिस्म के सिपाहियों ने काफी मशक्कत के बाद ताला तोड़ डाला। अंदरूनी जानिब से दो तीन सहमे हुए नौकर और खुदाम निकले, जो बावर्ची खाने के दरवाजे से बाहर निकलने की तगोदो में थे। उन्हें इत्मीनान दिलवाया गया कि कोतवाली को उनसे कोई सरोकार नहीं। ऊपर की मंजिल के कमरे खुले पड़े थे। मुझे एक पर्दे के पीछे से दो घुंघरुओं की जोड़ियां भी झलकती नजर आईं। अगला कमरा छोटा सा हॉल था जहां तबला और हारमोनियम सलीके से पड़े थे। शायद यहां रक्स की मश्क की जाती हो। हमारे इस घर में दाखिल होने से लेकर अब तक लगातार रहमान साहब के ड्राइवर, गार्ड, थानेदार और दीगर अमले के दस्ती वायरलेस सेट, वॉकी टॉकी पर दर्जनों पैगाम वसूल हो चुके थे, जिसमें रहमान साहब को आला हुक्काम और शहर के कमिश्नर और आईजी वगैरह की तरफ से मुसलसल हदायत जारी की जा रही थी कि वो जहां भी हों अपना मिशन खत्म करके फौरन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। रफ्ता रफ्ता ये पैगाम धमकियों की सूरत अख्तियार कर गए, लेकिन एसपी साहब अपनी आखिरी कश्ती भी जलाकर निकले थे। पुलिस के जवान मुख्तलिफ दरवाजों को धकेलते जा रहे थे और हर कमरा बेहद सजा हुआ, नफीस साजो सामान से आरास्ता और बेहतरीन आराइश का शाहकार था। कमरों की कलर स्कीम पर भी बहुत ध्यान दिया गया था, लेकिन सभी कमरे खाली थे और फिर आखिरी कमरा बंद मिला। रहमान साहब ने अंदर मौजूद फर्द को तंबीह की कि दरवाजा खोल दिया जाए वरना वो उसे तोड़ देंगे। अंदर से आवाज उभरी, थोड़ा इंतजार करें। कुछ देर बाद किसी के थके कदम घसीटने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। जनाना कपड़े और कॉस्मेटिक्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का मेकअप का सामान सजा हुआ था। एक पर्दे के पीछे से मुझे वो सुर्ख सैंडल भी झांकते हुए नजर आ गए जिनकी एक एड़ी इस वक्त पुलिस की तहवील में थी। एक औरत दरवाजा खोलने के बाद कमरे में अंधेरा करके दीवार के साथ दुबक कर बैठ गई। रहमान साहब के इशारे पर अमले के किसी फर्द ने कमरे की बत्ती जलाई तो पहले हमारी नजर कमरे के सामान और फिर उस सुकड़े सिमटे वजूद पर पड़ी। रहमान साहब ने कड़क कर उसे खड़ा होने को कहा तो घुटनों में छुपा एक चेहरा धीरे धीरे उठा और पुलिस का सारा अमला रहमान साहब समेत हक्का बक्का रह गया। औरत के भेस में हमारे सामने रेहान खड़ा था और उसकी हालत नहायत अबतर थी। आगे की कहानी ज्यादा पेचीदा नहीं थी। रहमान साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि अखबार और मीडिया तक उस छापे की खबर न पहुंचे, लेकिन फिर भी सुबह के तमाम अखबारात की शह सुर्खी मुल्क के बड़े सनतकार रेहान की अपनी मंगेतर को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तारी ही की थी। एक रात पहले जब मैं उस औरत का पीछा करते हुए गिर पड़ा था, तब नीचे रेत में मुझे सफेद जूतों का एक सोल नजर आया था। ये उन्हीं जूतों में से एक का सोल था जो मैं उसी सुबह रेहान को गाफ कोर्स में पहने हुए देख चुका था। रेहान गिरफ्तार हुआ तो रात भर नहायत बेचैन रहा और अपना वजूद छुपाने की कोशिश करता रहा। उसका बर्ताव भी बहुत अजीब था। कभी वो निस्वानी आवाज में पुलिस के अमले को संगीन नतायज की धमकियां देता तो कभी उनकी मिन्नत करता कि उसे वापस जाने दिया जाए, क्योंकि घर में रेहान अकेला घबरा रहा होगा। मैंने रहमान साहब से खसूसी दरख्वास्त की थी कि उसकी ये हालत आम न होने पाए और हमें हर हाल में रेहान का पर्दा रखना होगा। अगली सुबह तक रेहान बिल्कुल लाताल्लुक हो चुका था और हर सवाल के जवाब में सिर्फ खला ही में घूरता रहता। उसने सुबह ही इकरार कर लिया था कि वो लैला को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हाथापाई के दौरान लैला का पांव फिसला और वो ऊंचाई से गिर गई। रेहान के बयान से लगता था जैसे वो किसी तीसरी हस्ती के बारे में बयान दे रहा हो, लेकिन वो कौन थी जो रेहान के अंदर सालों से बसेरा किए बैठी थी? ये वो मुइम्मा था जिसका सुराग माहिर नफ्सियात दानों की सात रुकनी टीम पूरे 5 दिन बाद लगा पाई। तफ्तीश का आगाज रेहान के बचपन से हुआ। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला रेहान माँ बाप की आंखों का तारा था। अकलौता होने की वजह से माँ कभी उसे बेटे का प्यार देती और कभी बेटी का सिंगार करके उसके साथ खेलती, लेकिन मन्नतों मुरादों के बाद पैदा होने वाले बच्चे को घर से बाहर कम ही निकाला जाता। फिर न जाने कब रेहान के बाप गयासुद्दीन की जिंदगी में एक कमल नामी लड़की जो उसकी पुरानी सेक्रेटरी की जगह सिर्फ चंद दिन के लिए आई थी दाखिल हो गई और धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर नहीं पूरे कारोबार पर काबिज होती चली गई। गयास का अपनी बीवी से आए दिन झगड़ा रहने लगा और 4 साल रेहान पर्दों के पीछे छुपा अपने माँ बाप को चीख चीख कर लड़ते हुए देख कर रोता रहता। बात इतनी बड़ी कि गयास अपनी बीवी पर हाथ भी उठाने लगा और एक दिन तो रेहान ने अपने बाप को अपनी माँ का गला दबाने की कोशिश करते हुए भी देख लिया। बात कोर्ट के चेहरे तक चली गई और रेहान की माँ को उसके वालदैन आकर अपने साथ ले गए। रेहान को उसके बाप ने जाने नहीं दिया और मासूम रेहान अपने घर के पोर्च में खड़ा रोते हुए अपनी माँ को नाना की कार में पिछली सीट पर हमेशा के लिए जाते हुए देखता रहा। पलट पलट कर देखती हुई माँ की आंखों से टपके आखिरी 2 आंसू हमेशा के लिए रेहान की रूह को भिगो गए। शायद पहली मर्तबा उसी दिन उसके अंदर की शख्सियत 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, जिसमें से एक हिस्सा रेहान के पास रह गया और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए उसकी माँ के साथ रुखसत हो गया। बाप ने नन्हे रेहान को दरख्तों और पर्दों के पीछे छुपकर अपनी माँ के लिए रोते हुए देखा तो अपने वफादार ड्राइवर याकूब को हिदायत की कि उसके दफ्तर से वापस आने तक वही रेहान के बहलने का कुछ सामान किया करे। ड्राइवर को और तो कुछ न सूझी, वो उदास रेहान को लिए बंगले के पीछे अपने सर्वेंट क्वार्टर में ले आता, जहां उसकी बीवी और 6 बेटियां हर मुमकिन कोशिश करती कि उनके साहब के लाडले का दिल बहला रहे। लड़कियों के खेल ज्यादातर वही होते, गुड़िया और गुड्डे की शादी, कोकला छपाकी, हंडकलिया बनाना, फिर एक दूसरे को सस्ती नेल पॉलिश और सुर्खी से संवारना। सो रेहान भी उन्हीं मशगलों में गुम होता गया। तीसरे माह रेहान की सगी माँ को तलाक भेजने के साथ ही उसका बाप गयास कमल को रेहान की सौतेली माँ के रूप में घर ले आया। कमल ने 2-4 दिन गयासुद्दीन को दिखाने के लिए रेहान से झूठा प्यार जताया, लेकिन जल्द ही वो इस नाटक से ऊब गई और रेहान उसे कांटे की तरह खटकने लगा। बात सिर्फ सौतेलेपन की हद तक होती तो भी शायद कमल रेहान की मौजूदगी का कड़वा घूंट पी ही लेती, लेकिन कुछ अरसे बाद गयासुद्दीन की फैक्ट्री का नौजवान मैनेजर गयास की गैर मौजूदगी में किसी न किसी बहाने कोठी के चक्कर लगाने लगा तो ऐसे में कमल को रेहान के घर में मौजूदगी जहर लगती। ऐसे में या तो रेहान को ऊपर उसके कमरे में डांट टपट कर बंद कर दिया जाता या फिर कोठी के पिछवाड़े भेज दिया जाता कि वो जाकर याकूब की बेटियों से खेले। इस तमाम एहतियात के बावजूद रेहान की सौतेली माँ उसको मुख्तलिफ तरीकों से डराती रहती और उसे सीढ़ियों से जुड़े कमरे के नीचे वाले तहखाने में बंद करने की धमकी देती, ताकि वो अपने बाप को रात गए वापसी पर मैनेजर की आमद का जिक्र न करे। ऐसे मौकों पर अगर याकूब की घरवाली और बच्चियां कहीं गई होती तो रेहान अपने कमरे में बंद गुड़िया गुड्डे का खेल खेलता रहता। फिर उसके हाथ कहीं से लिपस्टिक लग गई तो वो अपनी बाजियों की तरह होंठों पर सुर्खी लगाने में मगन रहता। रफ्ता रफ्ता उसने आंखों में काजल भरना और नेल पॉलिश लगाना भी सीख लिया। फिर एक दिन उसे सौतेली माँ की ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप के सामान की पूरी किट ही नजर आ गई तो वो चुपके से वो भी अपने कमरे में उठा लाया और कई दिन तक मुख्तलिफ शेड्स से अपना चेहरा रंगीन करता रहा। बदकिस्मती से उसकी ये चोरी जल्द ही पकड़ी गई और उसकी माँ ने, जो नौकरानी पर उस किट की गुमशुदगी पर कई दिन से बरस रही थी, रेहान को मेकअप इस्तेमाल करते पकड़ लिया। सौतेली माँ का कहर उस दिन उरूज पर था और उसने सजा के तौर पर नन्हे रेहान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उसी तहखाने में कैद करके बख्श दिया, जिस तहखाने के जिक्र ही से रेहान भागकर अपने कमरे की अलमारी के पीछे छुप जाता था। वो 2 घंटे उस तारीख तहखाने में रेहान ने किस तरह रोते, सिसकते और डर से कांपते गुजारे, इसका एहसास सिर्फ वे कर सकते हैं जिनकी अपनी कोई औलाद हो। उस तहखाने की दीवारों पर उस रोज अंधेरे में रेहान ने इतने अजीबोगरीब हयौले बनते और मिटते देखे कि उस दिन उसकी अपनी शख्सियत ही एक हयौला बनकर रह गई। शाम को बाप के आने से पहले सौतेली माँ रेहान के जिस्म को तहखाने से बाहर खींच लाई, लेकिन उसकी रूह वहीं अंधेरे में भटकती रह गई। उस रात के बाद से अंधेरा रेहान को डसने लगा और वो सोते वक्त भी कमरे की तमाम बत्तियां जलाए रखने का आदी हो गया। ऐसे में कमरे में पड़ा आईना रेहान का सबसे करीबी दोस्त बनता गया। रेहान को मेकअप का शौक तो अपनी बाजियों से पहले ही मिल चुका था, अब इस तन्हाई को दूर करने के लिए और अपने रातों के खौफ को मिटाने के लिए उसने अपने ही कमरे में एक दूसरी दुनिया आबाद कर ली थी, क्योंकि उसके बाप को इतनी फुर्सत थी ही नहीं कि वो अपने खौफजदा बेटे के पास 2 घड़ी बैठकर 2 मीठी बातें ही कर लेता या उसे लोरी सुनाकर सुला देता। ऐसे में रेहान ने अपने खौफ को लोरी देने वाली खुद ईजाद कर ली। रात गए जब सारे घर की बत्तियां बुझ जाती तो वो चुपके से उठकर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने बैठ जाता और इधर उधर से चुराई सुर्खी और गाजा अपने चेहरे पर मलकर अपने आधे चेहरे का मेकअप करता। फिर यही आधा चेहरा उसकी माँ, बहन, दोस्त सभी कुछ बन जाता। दाहिनी हिस्से वाली औरत रेहान से बातें करती, उसे कहानियां और लतीफे सुनाती और चेहरे के बाएं हिस्से वाला रेहान खुश होता, हंसता और अपने चेहरे के दाहिने हिस्से से वो सब कहता जो वो अपनी सगी माँ को बताना चाहता था। उसका तरीका कार ये होता कि रेहान को जब औरत से बात करनी होती तो वो अपने चेहरे का बायां हिस्सा, जो बिना मेकअप सादा रहता, उसे आईने के रुख पर रखता और सवाल करता, जिद करता, कहानियां और लोरियां सुनने की फरमाइश करता और फिर जवाब के लिए चेहरे का दायां हिस्सा ऐसे रुख पर आईने को दिखाता कि सिर्फ वो मेहरबान औरत ही उसे शीशे में झांकती नजर आती, जो रेहान की सब जिदें, हर फरमाइश पूरी करती। और फिर जब रात निस्फ से भी ज्यादा बीत जाती तो रेहान की दोस्त, माँ, बहन और हमदर्द उसे एक अच्छी सी लोरी सुनाती, वो लोरी जो रेहान अपनी सगी मां से सुना करता था। और फिर आखिरकार रेहान को नींद आ जाती। इस तमाम अरसे में रेहान के कमरे का दरवाजा अंदर से मुकफ्फिल रहता और सुबह तक ही खुलता। जब वो औरत रेहान का माथा चूमकर अगली शाम तक के लिए रुखसत हो जाती, अब रेहान को बाकी दुनिया से शदीद बेजारियत और नफरत महसूस होने लगी थी। बस एक याकूब और उसका घराना ही था जहां कुछ देर के लिए रेहान का दिल लग पाता था, लेकिन अब वहां से भी रेहान सरे शाम ही भागने की करता, क्योंकि अंधेरा होते ही उसकी प्यारी और मेहरबान दोस्त ने जो आना होता था। वहां रेहान की सौतेली माँ कमल ने भी एक ही बार बड़ा हाथ मारने का मंसूबा बनाया और एक सुबह जब घर के मकीन उठे तो तमाम तिजोरियों और जेवरात समेत बैंक बैलेंस को साफ पाया। उस दिन के बाद से कमल और फैक्ट्री के मैनेजर की कभी कोई खबर न मिली। रेहान का बाप इस सदमे से संभल नहीं पाया। बात सिर्फ पैसे की होती तो 1 साल ही में खोए हुए माल से 3 गुना ज्यादा कमाने की सलाहियत रखता था, लेकिन उसे बिस्तर पर डाल देने वाला सदमा बेवफाई का था। रफ्ता रफ्ता जब बातें खुलने लगी तो पता चला कि कमल ने यह सारा मंसूबा ही अपने चाहने वाले फैक्ट्री मैनेजर की वसातत से बनाया था और उसकी शादी से लेकर अब तक हर बात पहले से एक मंसूबे के तहत तयशुदा थी। रेहान का बाप दोबारा बिस्तर से नहीं उठ सका और 15 साल रेहान को अपने वफादार ड्राइवर की सुपुर्दगी में देकर हमेशा के लिए आंखें मूंद गया। इस दौरान रेहान की सगी मां को भी तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सब बेसूद। याकूब ने नमक का हक अदा तो किया, लेकिन अब रेहान जवान हो रहा था और उसने अपने गिर्द इतना मजबूत खौल बना रखा था कि उसके दिल की बात किसी तक पहुंचना महाल था। आखिरकार याकूब की सबसे छोटी बेटी भी अपने घर सधार गई और याकूब की बीवी की मौत के बाद रेहान की जिंदगी का आखिरी रोशनदान भी हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन याकूब की बीवी मरते मरते अपने शौहर को उसके छोटे साहब के अंदर पलती दो अलग शख्सियत का हाल दे गई, क्योंकि उसने भी एक मां की तरह ही रेहान को पाला था और वो गुज़श्ता कई महीनों से रेहान की सरे शाम शुरू हो जाने वाली बेचैनी महसूस कर रही थी। याकूब ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जमाना शनास जरूर था। वो समझ गया कि रेहान अपने अंदर पलती उस औरत के साथ इतनी दूर आ चुका है कि अब उसकी वापसी बहुत मुश्किल है। रेहान ने शाम के बाद खुद को दुनिया से बिल्कुल काट दिया और दुनिया में अब सिर्फ याकूब ही वो वाहिद फर था जिसे पता था कि शाम ढलने के बाद रेहान रेहान नहीं रहता, उसके अंदर की औरत बाहर निकल आती है। दिलचस्प बात यह थी कि रेहान के अंदर की औरत की उम्र रेहान के बढ़ने के साथ साथ घटती गई। बचपन में वो उसकी माँ थी, लड़कपन में दोस्त और हमदर्द, और जवानी में वो बाकायदा एक महबूबा के हुकूक हासिल कर चुकी थी। दिन में अगर अमले के किसी लड़के से रेहान दो घड़ी रुककर बात कर लेता या कोई रेहान की शानदार शख्सियत को नजर भरकर देख लेती, तो शाम को कमरे में आने के बाद जब रेहान आईने के सामने बैठता तो उसकी रूह की काबिज बाकायदा उससे लड़ती झगड़ती और रूठ जाती। दोनों के दरमियान मुकालमे की सूरत कुछ यूं बनती कि रेहान बाएं जानिब चेहरे की ओर से उससे पूछता, आज कुछ चुपसी हो, कोई नाराजगी है क्या? दाहिना मेकअप ज्यादा हिस्सा मुंह बनाकर कहता, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो उस फूल जड़ी शाइस्ता के नखरे उठाने से ही फुर्सत नहीं। रेहान उसे मनाता, ओहो अब जाने भी दो, वो नई अकाउंटेंट है, कुछ रहनुमाई की जरूरत थी उसे, सो मैंने बता दिया, वरना तुम तो जानती हो कि। फौरन वो पलटकर आईने पर काबिज हो जाती और गुस्से से कहती, हाँ हाँ 3-4 हजार के अमले में से और उसे कोई नहीं मिला था अपनी उलझन दूर करने के लिए, मैं सब जानती हूँ इन औरतों के चलतर। ठीक है, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो फिर जाओ उसी की रहनुमाई करो, मेरे पास क्या लेने आयो। रेहान बेबस हो जाता, ओ तुम फिर रूठ गई, अच्छा बाबा पक्का वादा, आइंदा किसी से कोई काम की बात भी नहीं करूंगा, चलो आप नाराजगी खत्म कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। जवाबन नीम रजामंदी का इजहार भी मसनूई गुस्से से किया जाता, खूब जानती हूँ मैं ये सब बहाने, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें भूखा सोते नहीं दे सकती, तभी मुझे इतना सताते हो। अच्छा चलो अब मुंह न बसूरो, उठकर खाना खा लो। रेहान खुश होकर मुस्कुरा देता और वक्ती तौर पर झगड़ा खत्म हो जाता। इसके साथ ही कैसेट नंबर 12 अपने अख्तिताम को पहुंची। बकिया नावल सुनने के लिए कैसेट नंबर 13 लगा लीजिए। हमारी सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर बोलती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीफ से राबिता करें।